ओम शांति। किसी एक देश में एक बहुत ही प्रसिद्ध राजपुरोहित थे और उनका बहुत सम्मान था और वो बहुत विद्वान थे। जब वो राज्यसभा में आते तो राजा भी झुककर उनका अभिवादन करते और जितना उनका ज्ञान था उतना ही वो निरंकारी भी थे। और उनके मन में एक दिन प्रश्न आया कि मुझे जो सम्मान प्राप्त है वो मेरे ज्ञान के आधार से है या चरित्र के आधार से है। वो सोचते हैं कि लोग इतना मेरा सम्मान करते हैं, राजा इतना सम्मान करता है, ये जो चरित्र है इसके कारण है या मेरे पास जो विद्या है, ज्ञान है, पांडित्य है उसके कारण है। और वो जब ये सोच रहे होते हैं तो उनके मन में एक विचार आता है, एक योजना वो बनाते हैं। उस योजना के अनुसार जैसे ही वो राजभवन में जाने लगते हैं तो राजा उन्हें खजाने की ओर ले जाता है किसी काम से, तो वो राजपुरोहित उस खजाने के पास जब पहुंचते हैं तो यहां वहां देखते हैं और 5 सोने के सिक्के चुरा लेते हैं और अपनी जेब में डाल देते हैं। वो खजानची देख लेता है कि इन्होंने ये क्या किया। उन्हें विश्वास नहीं होता उस खजानची को कि ये राजपुरोहित ऐसा काम कर सकता है, चोरी। पर वो किसी से कुछ कहता नहीं है। दूसरे दिन फिर राजपुरोहित उसी खजाने के कमरे में आते हैं और फिर से 5 सिक्के चुरा लेते हैं। फिर से वो खजानची देखता है कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है, इतना महान व्यक्ति जिसको राजा भी सम्मान देता है वो चोरी जैसा निकृष्ट कर्म कर सकता है और इसका इतना बड़ा पद है राज्य में, वो ऐसा करता है। और धीरे धीरे उस राजपुरोहित के प्रति उसके मन में विरोध के भाव उत्पन्न होते हैं। तीसरा दिन आता है, वो राजपुरोहित फिर घूमने के लिए खजाने के पास आते हैं और फिर चुपचाप से 5 सिक्के उठा लेते हैं। अब तो उस खजानसी से रहा नहीं जाता, उसका पूरा विश्वास चूर चूर हो जाता है और वो कहता है अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। और वो सीधा राजा के पास चले जाता है और बताता है कि ये जो राजपुरोहित है और जिन्हें आप इतना मान देते हो वो पिछले 3 दिनों से खजाने से पैसे चुरा रहे हैं, सिक्के। राजा को ये बात सुनकर बड़ा दुख होता है, आश्चर्य भी होता है, क्रोध भी आता है। और दूसरे दिन सभा लगती है, राजा आकर बैठते हैं, राजपुरोहित आकर बैठते, परंतु आज राजपुरोहित को देखकर राजा उनके लिए उठता नहीं है, सम्मान नहीं करता, आज उसकी तरफ देखता भी नहीं है। सभा की कार्रवाई चालू होती है, कार्रवाई पूरी होती है, पर राजा उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। वो राजपुरोहित मन ही मन सोचता है कि मेरी योजना रंग ला रही है। सभा पूरी होती है, राजा उस राजपुरोहित को बुलाता है और पूछता है ये मैं क्या सुन रहा हूं, आजकल राज के खजाने में क्या कुछ गड़बड़ चालू है? राजपुरोहित कुछ नहीं बोलते, चुप। फिर राजा पूछता है, क्या आपने राज्य के खजाने से कुछ सिक्के चुराए, और यदि हां तो कितने चुराए और वो कहां है? तो वो राजपुरोहित 15 सिक्के निकाल कर सामने रख देता है। राजा कहते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा विश्वासघात, मेरी कभी आशा नहीं थी कि ऐसा कभी होगा, बड़ी निराशा हो गई। जिस पद पर तुम प्रतिष्ठित हो उसकी गरिमा के ये विरुद्ध था, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब वो राजपुरोहित सत्य का उद्घाटन करते हैं और कहते हैं, ये मेरी एक योजना थी, मैं जानना चाहता था कि इस राज्य में मुझे जो पद प्राप्त है उस पद के कारण मेरी महिमा है, मेरे पास जो ज्ञान है उसके कारण मेरी महिमा है, जो शास्त्र मैंने पढ़े हैं, जो पांडित्य मेरे पास है उसके कारण मेरी महिमा है, या मेरे चरित्र के कारण मेरी महिमा है। और आज मुझे ये और अच्छी तरह से पता चल गया है कि मेरी जो महिमा है वो ज्ञान की वजह से नहीं है, वो चरित्र की वजह से है। क्योंकि जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी आपके मन को लगा, ज्ञान तो अब भी मेरे पास है परंतु चरित्र की दृष्टि से मैं नीचे गिर गया हूं। तो इस राज्य में चरित्र ही सबसे बड़ा धन है, चरित्र ही सबसे बड़ा खजाना है। धन चला जाता है तो कहा जाता है कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला जाता है तो कहा जाता है कुछ तो गया, परंतु चरित्र चला जाता है तो सब कुछ गया। और जो चरित्र एक बार चला गया उसको ठीक किया जा सकता है? बहुत मुश्किल है। इसके लिए चरित्र का मूल्य सबसे अधिक है। इसलिए वो राजपुरोहित कहता है कि अब मुझे पता चल गया है कि मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक मूल्य उसके चरित्र का है, और जब संसार में चारित्रिक पतन होगा तब संसार का पतन होगा। आधा कल्प हंस नृत्य करते हैं सृष्टि पर, और आधा कल्प बगुले क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, अपनी कर्कश वाणी से सारी सृष्टि को कोलाहल में परिवर्तन कर देते। जहां आधा कल्प सृष्टि पर हंसों का नृत्य है और हंसों का संगीत है, जहां पर मधुर रागिनी है हंसों की, वहीं आधा कल्प सृष्टि पर बगुलों की दुखदाई वाणी है, कर्कश वाणी है, संडे की अव्यक्त वाणी का एक भाग रहा हुआ है, आखिरी भाग किसी इनकम टैक्स ऑफिसर से बाबा बात कर रहे हैं, तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे। इस संस्था के लिए दो शब्द बाबा ने कहे, ये घर भी है तो विद्यालय भी है, और मुख्य रूप से ये विद्यालय है तो इस विद्यालय की क्या क्या विशेषता है, इसके विषय में बाबा उस आत्मा को बता रहे हैं। पहली बात तो थी घर, उसके विषय में ज्यादा विस्तार नहीं किया, परंतु ये संस्था एक घर है, इसका क्या अर्थ है? या फिर मधुबन ही घर है? अर्थात यहां क्या है, ईश्वरीय कुटुंब, परिवार रहता है इस घर में, गॉडली फैमिली, गॉड्स फैमिली, प्रभु परिवार, दैवी परिवार, डिवाइन कम्युनिटी। अलग अलग मूल्यों में अलग अलग शब्द आते हैं, दैवी संप्रदाय, तो ये घर भी है। और घर में कौन सी फीलिंग आती है हर एक को? अपनेपन की। सारे विश्व भर व्यक्ति घूम जाए, घूमे, परंतु अंततः उसे याद किसकी आती है? अपने घर की। जब घर लौटता है तब उसे अच्छी नींद आती है कई दिनों के बाद। अब आराम लगता है कि आहा, अब ठीक ठाक लग रहा है, अब थोड़ी सी चैन मिली। तो मधुबन घर भी है। आज हम इस घर की तो चर्चा नहीं करेंगे, कभी मधुबन में हमने परमधाम रूपी घर की विस्तार से चर्चा की थी। बाबा ने कहा ये संस्था क्या है, विद्यालय है, और इस विद्यालय में आत्माओं को चरित्रवान बनाया जाता है। यहां पर क्या किया जाता है, चरित्रवान। और जैसे बताया, चरित्र ही सबसे बड़ा खजाना है, धन है, मूल्य उसी का है। ऐसा नहीं कि वो राजपुरोहित जानता नहीं था, वो विद्वान था, वो पंडित था, ज्ञान उसके पास बहुत था, ये भी पता था कि चरित्र ही सब कुछ है, फिर भी उसने इतनी बड़ी योजना बनाई और फिर भी उसने वो सब कुछ किया, चोरी तक भी की, और अंततः उसने ये सिद्ध किया स्वयं को बताने के लिए, स्वयं के लिए ही, कि चरित्र ही सर्वश्रेष्ठ खजाना है, सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। और जो चरित्र को खो देता है उसे फिर से पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं कि पाया नहीं जा सकता, परंतु लोकपवाद, संसार की निंदा, बहुत सारी चीजें, तो ये संस्था एक विद्यालय है। क्या विशेषता है इस विद्यालय की? सात विशेषता उस मुरली में आई है, पहले आप बताएंगे फिर उस मुरली की बातों की चर्चा करेंगे। इस विश्वविद्यालय की क्या विशेषता है, या इस स्कूल की क्या विशेषता है, इस कॉलेज की, इस यूनिवर्सिटी की क्या विशेषता है, इस पाठशाला की? पढ़ाई सबके लिए पढ़ाई सेम है, और इस पढ़ाई से उच्च पद की प्राप्ति है, और पतितों को पावन बनाने की ये पाठशाला है, और अभी ये हो गया है, अब उस कैटेगरी के बाकी पॉइंट्स नहीं बतानी, वो एक पॉइंट में सब आ गया, और एक ही टीचर बाकी सब विषय को पढ़ाने वाला एक ही है। कॉलेजों में हर एक के लिए अलग अलग, छोटी स्कूल्स में छोटी कक्षा में हो सकता है एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा दे, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, कॉलेजेस में फिजिक्स वाला फिजिक्स पढ़ाएगा, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री पढ़ाएगा, यहाँ हिस्ट्री पढ़ाने वाला भी एक ही है, ज्योग्राफी पढ़ाने वाला भी एक ही है, म्यूजिक टीचर भी वही है जो गीत सुनाता है, गीत सिखाता है, वाह बच्चे वाह, खुद भी गाता है, और टीचर ऐसा अद्भुत है कि खुद ही गीत गाता है और सिखाता भी है। यहाँ आर्ट का सब्जेक्ट भी वही पढ़ाता है, बहुत सारी आर्ट, बहुत सारी कलाएं, क्योंकि उसे अपने स्टूडेंट्स को 16 कला संपन्न बनाना है, इसलिए आर्ट का टीचर भी वही है, मैथ्स का टीचर भी वही है, कौन सा मैथ सिखाता है? मैथ्स कौन सा सिखाता है? कर्मों के हिसाब किताब सिखाता है और कार्मिक अकाउंट सिखाता है। एक का पदम गुना कैसे मिले ये सिखाता है। और कौन सा स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स सिखाता है? एक का पदम गुना कम कैसे होगा। और कौन सा स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स सिखाता है? हिम्मत का एक कदम तुम्हारा हजार मेरे। और क्या सिखाता है? 2q + 2c = 0। 2q + 2c = 0। इस पर दो क्लासेस हुई थी पांडव भवन में। 2q अर्थात 1q क्वेश्चन, दूसरा कोटेशन। 2c अर्थात करेक्शन और अगला सी एक करेक्शन और दूसरा सी कुछ भी बना सकते हैं वैसे तो। करेक्शन करना दूसरों को और क्या करना करेक्शन दूसरों को करेक्ट करना और इसका परिणाम क्या है? 0। स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स सही। और स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स क्या है? कौन सी मैथ सिखाता है टीचर? 1+1 = 0, 1+1 = 2, 1+1 = 11, 1+1 पदम गुना। ये चार इक्वेशंस है। कैसे कैसे चार इक्वेशंस? 1+1 = 0, 1+1 = 2, 1+1 = 11 और 1+1 पदम गुना। ये भी बाबा सिखाते हैं। कैसे? एक और एक जीरो कैसे? जितना किया उसने बना, पर उससे जीरो तो नहीं होगा। जीरो तो नहीं होगा, सेवा तो की उसका कुछ तो मिलेगा। वर्णन भले किया आधा कट होगा बाबा ने कहा, पूरा नहीं जाएगा। पॉजिटिव का जीरो कैसे होगा? पॉजिटिव जीरो नहीं हो सकता है। 1+1 = 0, 1+1 = 2, 1+1 = 11, 1+1 पदम गुना। तो ये टीचर स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स भी सिखाता है। एक व्यक्ति है, दो परिवार। एक व्यक्ति ने दूसरे परिवार के एक व्यक्ति को मार दिया, फिर दूसरा परिवार का एक व्यक्ति उठता है, रिटेलिएशन, बदला लेता है और उस व्यक्ति को मारता है और परंपरागत द्वंद होता है उन परिवारों में और एक समय आता है कि दोनों ही परिवार भस्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वो दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो परिवार हो सकते हैं, दो समाज हो सकते हैं, दो देश भी हो सकते हैं। 1 और 1 दो मिल गए और जहां नफरत है वहां क्या होगा? विनाश। दूसरा है 1+1 = 2, 1 + 1 = 2। एक व्यक्ति एक काम कर रहा है, उसकी मदद को दूसरा आ गया तो 2 हो गए। सिंपल, ये सबसे आसान है। 1 और 1 = 11, ये क्या है? 11 नोबल कॉज, कोई महान कार्य। एक चाणक्य को एक चंद्रगुप्त मौर्य मिल गया, राज्य की सत्ता बदल दी, भारत का नक्शा बदल दिया, नंद की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया। जब महान कार्यों के लिए लक्ष्य आध्यात्मिक नहीं था, लक्ष्य धार्मिक नहीं था, परंतु बहुत निस्वार्थ था, बहुत श्रेष्ठ था, बहुत ऊंचा था, अखंड भारत का स्वप्न था कि सारा भारत एक हो जाए, अखंड हो जाए, जनपदों में बटा हुआ, खंड खंड बटा हुआ एक हो जाए। श्रेष्ठ स्वप्न था, ऊंचा स्वप्न था, क्या चाणक्य इस यज्ञ में है इस समय? है या नहीं है? क्यों क्यों? जो व्यक्ति अखंड भारत का स्वप्न देखता है वो देवकुल की ही आत्मा होनी चाहिए। बिना देवकुल की आत्मा हुए वो भारत से इतना प्यार कैसे करेगी? यही होना चाहिए उसको भी, जिसने भारत को जोड़ा। सब इधर ही है, सब इधर ही है। वो सारे जिन्होंने देश के लिए प्राणों की आहुति दी, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे वो भगत सिंह हो, वो सारे कहीं ना कहीं इधर ही हो सकते हैं। शायद इसी सभा में कोई बैठी है झांसी की रानी। एक और एक पदम तब होता है जब आध्यात्मिक कार्य के लिए दो आत्माएं साथ आ जाती है, जब ब्रह्मा और मम्मा साथ आ जाए, जो दादी और दीदी साथ आ जाए, जो किसी सेवा केंद्र पर रहने वाली दो बहनें हैं और उस पूरे शहर में एक ही केंद्र है, वो दो बहनें ही पूरे शहर में क्रांति लाने की निमित्त बनेगी। आज की मुरली में रिवॉल्यूशन होगा, भक्ति के तख्त हिलेंगे। दो आत्माएं सारे संसार को हिला सकती है, क्योंकि दो चिंगारियां आग लगा देगी। कलयुग के जंगल को दावानल बनकर संसार के विकार भस्म होंगे। तो ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है। तो ये टीचर क्या क्या पढ़ाता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स हो गया, आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, लैंग्वेज। लैंग्वेज का भी ये टीचर है। कौन सी लैंग्वेज पढ़ाता है, उसकी लैंग्वेज कौन सी है, ये अभी तक पता नहीं चला है। हिंदी है कि इंग्लिश है कि सिंधी है कि मैथिली है कि मराठी है कि गुजराती है कि पंजाबी है कि इंग्लिश है, कौन सी है पता नहीं। सारी भाषाएं उसमें आती है। बरोबर, बरोबर हिंदी में होता है बराबर, बाबा कहते हैं बरोबर, वो आता है गुजराती और मराठी में। कुछ कुछ मैथिली शब्द है, कुछ कुछ संस्कृत के शब्द है, मन मना भव, कुछ कुछ उर्दू भी है, माशूक आशूक महफिल में जल उठी शमा उल्फत, उड़िया भी है। और एक तो भाषा ऐसी है कि जिस पर अब तक रिसर्च चालू है, वो भाषा कौन सी है पता नहीं चली है। हाँ, आते हैं कोर्स करंती, फिर बाबा का बनंती, फिर निश्चय बुद्धि होवंती, फिर दूसरों को कोर्स करावंती, फिर दूसरों को निश्चय बुद्धि बनावंती, और खुद फिर बाबा को फारकती देवंती, फिर यहां से जाकर ट्रेटर बनंती, फिर बाबा की डिससर्विस करंती। ओहो ममो माया, ये कौन सी भाषा है? कवंती करंती, ये संस्कृत भी नहीं है, पूरा संस्कृत भी नहीं है, पूरा हिंदी भी नहीं है। उड़िया से मिलता है, मराठी से भी मिलता है फिर तो, पर कोई एक भाषा नहीं है। तो लैंग्वेज टीचर भी है व्याकरण के विषय में, व्याकरण भी सिखाता है, नाम सिखाता है, संज्ञा सिखाता है, सर्वनाम सिखाता है, विशेषण सिखाता है। इस पर कभी एक पांडव भवन में क्लास हुई थी, पुरुषार्थ के व्याकरण की त्रुटियां, पुरुषार्थ का व्याकरण सिखाता है और उसमें क्या क्या त्रुटि है वो भी सिखाता है। जिसे तुम प्रेम की संज्ञा देते हो वो प्रेम नहीं मोह है, तुम्हारा नाउन ही गलत है, व्याकरण को बदलने की आवश्यकता है। तो वो ग्रामर टीचर भी है, व्याकरण भी सिखाता है। कौन सा व्याकरण सिखाता है? जीवन का व्याकरण सिखाता है, पुरुषार्थ का व्याकरण सिखाता है, सफलता का व्याकरण सिखाता है। तो वो लैंग्वेज टीचर भी है। और कौन सा टीचर है वो? कौन से सब्जेक्ट सिखाता है इस विश्वविद्यालय में? वो साइंस सिखाता है। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसमें ये हो गया साइंस। साइंस के साथ वो दूसरा एक सूक्ष्म सब्जेक्ट सिखाता है, साइलेंस। वो सोशल साइंस भी सिखाता है। ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है, एक है सोशल साइंस होता है, समाज शास्त्र, समाज की कैसी व्यवस्था हो, समाज में क्या दोष है, समाज में क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो भी सिखाता है। और मनोविज्ञान सिखाता है, ऐसा मनोविज्ञान सिखाता है जो आज तक शायद विदेश में, भारत में किसी ने नहीं सिखाया। इस मनोविज्ञान के आगे सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत बहुत फीके पड़ जाते हैं। इस मनोविज्ञान के आगे जो बर्ट्रेंड रसल ने कुछ कहे, इमैनुअल कैंट ने जो रखे, डार्विन की थियरी, ये सब सब बहुत फीके पड़ जाते हैं। सारे सिद्धांत उधर के और इधर के, वो सिद्धांत बदलते जाते हैं, बहुत उसमें नवीनता आती जाती है। जो पहले सिद्धांत थे, सिगमंड फ्राइड के ही शिष्यों ने उसके गुरु के सिद्धांत को उखाड़ कर फेंक दिया। कार्ल गुस्ताव जंग एंड एडलर, उन्होंने अपने गुरु के ही विरुद्ध में कुछ कुछ सिद्धांत रख दिए, जबकि सबसे ज्यादा मनुष्य मन पर काम करने वाला व्यक्ति इस इतिहास में सिगमंड फ्राइड था। जिस गहराई में वो पहुंचा शायद ही कोई पहुंचा होगा, परंतु भारत का मनोविज्ञान तो उससे कहीं पहले ही बहुत गहराई में जा चुका था। परंतु भगवान क्या सिखाते हैं? मनोविज्ञान, मन सिखाते हैं, मनोविज्ञान सिखाते हैं, मन कैसे काम करता है वो सिखाते हैं, मन के क्या रूप है, कौन सी परतें हैं अवचेतन की, वो सारी बातें सिखाते हैं। संस्कारों की फिलॉसफी सिखाते हैं, बहुत गहरी गहरी बातें सिखाते हैं। मेडिटेशन, मेडिटेशन साइंस वो उसमें आ जाएगा। और कौन से सब्जेक्ट होते हैं उधर लौकिक दुनिया में? एक है एस्ट्रोलॉजी, एक है एस्ट्रोनॉमी, दोनों में क्या अंतर है? एस्ट्रोलॉजी वैज्ञान एस्ट्रोलॉजी को कम मानता है, एस्ट्रोनॉमी को जरूर मानता है। ये साथ है, तारे सितारे उनको ज्यादा मानता है, पर ये ज्योतिष शास्त्र सूडो साइंस कहा जाता है इसे, पैरासाइकोलॉजी, ये सारी चीजें शब्द है अलग अलग, तो वो साइंस भी सिखाता है और ये सारी चीजें। और कौन से सब्जेक्ट होते हैं संसार में स्टूडेंट्स को? कौन सा? होम साइंस। अच्छा, होम साइंस, ओके ओके, तो होम साइंस, होम साइंस, स्पोर्ट्स उसको कहते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग का एक पीरियड होता है, तो यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग भी पापा सिखाते हैं। और वॉर वो भी सिखाते हैं। आज मेडिकल साइंस, नेचर की ओर, वो तो है ही हर्बैलिस्ट, बाबा कहते हैं मैं हर्बैलिस्ट हूँ, आया हूँ तुमको नेचर की ओर सिखाने। तो वो सैनिक को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो सब कुछ सिखाता है। कल के न्यूज़पेपर में था, जो आतंकवादी है सरहद पर, उनकी दिनचर्या लिख के आई थी कल के न्यूज़पेपर, किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। सुबह 3 बजे उठना, सुबह 3 बजे उठना, नमाज 3 से 5, 5 बजे क्लास, किस पर? आर्म्स, और फिर नाश्ता, और फिर जीपीएस ट्रेनिंग, और फिर उनके सारे मैप्स की ट्रेनिंग, फिर उसके बाद वापस नमाज, फिर वापस क्लास, फिर थोड़ा स्पोर्ट्स, बैलेंस रखते हैं ज्ञान योग का, फिर उसमें भी तीव्र पुरुषार्थी होंगे, फिर वापस नमाज, फिर वापस कुछ ट्रेनिंग, फिर वापस क्लास, और उसमें भी अलग अलग ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, पहले थोड़े से ढीले, फिर थोड़े और ऊपर जाएंगे, फिर और ऊपर, उसमें भी ग्रेड्स है। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में उसका ये था पूरा, कैसी उनकी ये है दिनचर्या, कैसे उनको ट्रेनिंग किया जाता है। उनका करिकुलम थोड़ा सा इधर मिलता जुलता है, परंतु आत्मा भटक गई है। यही अंतर है, दिशा ही गलत हो गई है। जाना चाहते हैं जन्नत में परंतु दोजख यहां बना रहे। लक्ष्य है जन्नत जाने का परंतु यहां ही दोजख का निर्माण कर रहे। तो ऐसा ये टीचर है। तो अब अभी हम मुरली पर आते हैं। ये जो मुरली थी और बाबा जो इनकम टैक्स ऑफिसर से कौन था पता नहीं उससे मिल रहे हैं, तो बाबा ने कहा ये जो संस्था है ये विद्यालय है और घर भी है, तो इस विद्यालय की 7 विशेषताएं बताई। सबसे पहले लक्ष्य, सबसे पहले लक्ष्य। लक्ष्य है ऊंचा बनना, अच्छा रहना। एक शब्द कहा बाबा ने, ऊंचा बनना और अच्छा रहना। संसार में हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है परंतु चरित्रवान बनने की शिक्षा कहां दी जाती है? ऊंचा उठने की शिक्षा कहां दी जाती है? मॉरल एजुकेशन कहां है? कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन कहां है? साइंस है, सब कुछ है, उससे साइंटिस्ट बन सकते हैं, पर क्या साइंटिस्ट बनने के बाद, क्या आईएएस ऑफिसर बनने के बाद उस आत्मा में, उस चेतना में इतनी शक्ति है कि कोई घुस दे और उसको वो मना करे? वो जो पावर है, वो जो शक्ति है, वो जो सामर्थ्य है, केवल और केवल अध्यात्म का सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, और किसी से वो शक्ति नहीं आएगी। स्पिरिचुअल पावर से ही वो शक्ति आएगी। जिसके लिए इस विश्वविद्यालय में क्या किया जाता है, ऊंचा बनाया जाता है, अच्छा बनाया जाता है, श्रेष्ठ बनाया जाता है, महान बनाया जाता है। और ये जो चारित्रिक महानता है, यही सबसे बड़ी महानता है संसार, क्योंकि संसार का जो पतन हुआ है वो केवल और केवल विकार के कारण। जो सृष्टि पर कभी हंस नाच रहे थे, आज बगुले तांडव नृत्य कर रहे हैं। इसलिए चरित्र को उठाना है, किसी आत्मा का कल्याण करना है, उसे बस चरित्र का महत्व बता देना, बाकी अपने आप हो जाएगा, बाकी उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज स्कूलों में जाओ, कॉलेज में जाओ, स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प है, पर जितने बच्चे शार्प उतना ही खतरा और, क्योंकि जिस बुद्धिमानी से उन्होंने ये अच्छी चीजें उठा ली, वो बुरी चीजें भी उतनी ही बुद्धिमानी से उठा लेंगे, और हर एक के हाथ में मोबाइल है, कौन कब क्या देख रहा है, इस पर क्या कंट्रोल किसका, और ये बुद्धि उनको अभी तक नहीं है कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। और सबसे पहले जो गिरावट आएगी वो चरित्र की गिरावट आएगी, और जब चरित्र एक बार गिर गया तो बुद्धि एकाग्र नहीं रह सकती, और जहां एकाग्रता नहीं वहां ज्ञान भी संपादन नहीं किया जा सकता है। सारे ज्ञान को पाने के लिए केवल और केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, कॉन्सेंट्रेशन। विवेकानंद ने कभी कहा है, इफ आई एम टू स्टार्ट माई एजुकेशन ऑल ओवर अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मास्टर द आर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड देन एट वन गो विल कैप्चर ऑल नॉलेज, ऑल इंफॉर्मेशन। यदि मुझे अपना बचपन फिर से चालू करना पड़े तो सबसे पहले मैं एक ही चीज सीखूंगा, एकाग्र कैसे हुआ जाए। संपूर्ण एकाग्रता जहां होगी, जैसे ये इतनी बातें लिखी हुई है इस कागज पर, इतनी मुझे पढ़नी है, और जो मन संपूर्ण एकाग्र है वो उसको एक बार पढ़ेगा, दो बार पढ़ेगा और बस खींच लेगा उसको, और जहां बुद्धि बिखरी हुई है, हजार बार पढ़ते रहो इसको, कभी याद नहीं रहेगा। ज्ञान के संपादन के लिए एकाग्रता चाहिए। पूरी मुरली 4 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, जहां एकाग्रता नहीं कुछ भी याद नहीं। और एकाग्रता का भी एक सूक्ष्म आधार है, द प्योरर द माइंड द इजियर इट इज टू कॉन्सेंट्रेट। मन जितना शुद्ध है, विकार उसमें नहीं है, ऐसा मन बहुत जल्दी एकाग्र हो जाता है। तो इस विश्वविद्यालय की 7 विशेषताएं बाबा ने बताई। सबसे पहले विशेषता लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य ही यहां ऊंचा बनना, अच्छा करना, ये यहां सिखाया जाता है। ऐसी शिक्षा इस संसार में और कहीं नहीं दी जाती। मॉरालिटी की शिक्षा सब जगह है, ऐसा नहीं कि मॉरालिटी की शिक्षाएं नहीं है, सभी धर्मों में महानता की बातें आई है। एवरी रिलीजन हैज प्रोड्यूस्ड स्पिरिचुअल जायंट्स, परंतु वहां पर एक या दो होंगे या हरेक है, यह अंतर है। हरेक का जीवन किसी ना किसी अर्थों में महान ही है, यहां पर बड़ा ऊंचा जीवन है, बहुत श्रेष्ठ जीवन है। तो यदि हम इस विद्यालय के विद्यार्थी हैं, तो हमारा जीवन बहुत ऊंचा होना चाहिए, हमारे विचार महान होने चाहिए। और महान विचार कहां से मिलेंगे? मुरली से। मुरली से महान विचारों को चुराना है, समाना है, बुद्धि में रख देना है। ये सबसे पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, इस विश्वविद्यालय की सत शिक्षक है। यहां पर जो शिक्षक है वो स्वयं भगवान है, और जैसे हमने चर्चा की, सारे विषयों का वो ज्ञान देता है। इस संसार की ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मुरली में नहीं आई है। सारी मुरलियों का यदि अध्ययन करें, अव्यक्त वाणियां, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है ह्यूमन माइंड का, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है साइकोलॉजी का, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है सबकॉन्शियस माइंड का, ऐसी कोई थियरी नहीं है मनोविज्ञान की या परामनोविज्ञान की, जो कि मुरली में जिसको बाबा ने नहीं छेड़ा है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, थोड़ी ना थोड़ी बात तो आई है, केवल हम किस तरह से उस मुरली को पढ़ते हैं और कितना इंटरेस्ट से पढ़ते हैं और कितनी बार पढ़ते हैं और किस किस नजरिए से उसको देखते हैं और कितना टाइम उसको देते हैं। संसार की बातों में टाइम जा रहा है तो वो मुरली केवल क्लास में जाना, सुनना, यहां तक सीमित रहेगी, बस उससे कुछ नहीं होगा। पानी से नहाने से कुछ नहीं होता है, पसीने से नहाने की आवश्यकता है, तब सफलता मिलती है। तो सत शिक्षक, शिक्षक कैसा है? सत, ट्रुथ, वो जो कहता है वो सत्य कहता है, झूठ उसे बोलना आता नहीं, वो झूठ है ही नहीं, उसके वाक्य वाक्य में सत्य छिपा है। और मनुष्यों ने सत्य की दिन रात खोज की है, दिन रात द्वापर से खोज चालू हुई सत्य की, बहुत सारी बातें समझी, परंतु सत्य क्या है समझ नहीं पाए। एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, एक ही सत्य है विप्र, ब्राह्मण विद्वान अलग अलग रूपों से उसे कहते हैं, यहां तक भी कहा, पर वो सत्य क्या है, वो सत्य कौन सा है, वो सत्य कहां मिलता है, वो परम सत्य क्या है, वो किसे ही नहीं पता। ढूंढते ही रह गए धर्मों में, किताबों में, शास्त्रों में, मतों में, परंपराओं में, रूढ़िवादिता में खो गया वो सत्य। सत्य क्या था और वो कहां रह गया? परंपराओं ने उस सत्य को ढक दिया। भगवान सत शिक्षक है, इसके लिए ये समझना सामने जो टीचर है वो कोई साधारण नहीं है, स्वयं भगवान पढ़ा रहा है। वो पढ़ा रहा है जो इस संपूर्ण सृष्टि का साक्षी है, सृष्टि यहां है और जिसे हर बात पता है, सृष्टि की, सृष्टि में क्या क्या हुआ, समय का वो साक्षी है, जिसने हर युद्ध को देखा है, जिसने हर पतन को देखा है, भारत को उठते हुए भी देखा है तो गिरते हुए भी देखा है। हर आत्मा के विषय में ऐसा कुछ भी नहीं जो उसे पता नहीं, मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, साकार महावाक्य, वो पढ़ा रहा है। कैसा नशा चाहिए कि वो पढ़ा रहा है तो कितना अटेंटिव, कितना केयरफुल। अंग्रेजी में एक कहावत है, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। यदि तुम्हें स्वतंत्र होना है, यदि तुम्हें मुक्त होना है, तो अहर्निश जागरण, चौकन्ना रहना पड़ेगा, चौकस रहना पड़ेगा निरंतर, यह है कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी। मुक्त होना चाहते हो, छूट जाना चाहते हो, इस बंदी ग्रह से छूट जाओ, पर कीमत क्या है? निरंतर जागरण, सतत जागरण, अहर्निश जागरण, प्रतिपल वेकफुलनेस, अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट। हर चीज होश में करना है, बेहोश हुए कि गिरे। सुबह के वरदान में था माया क्या करती है, किन दो शक्तियों को खत्म कर देती है, गायब हो जाती है, महसूसता और क्या करती है, समझ, समाप्त कर देती है समझ को। तो ये टीचर कैसा है? सत्य। जो पढ़ा रहा है वो कैसा है? सत्य। पर बाबा ने ये भी कहा है कि ये अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं कि मैं जो कुछ बोलूं वो मान लो, जज करो मैं जो कहता हूं वो राइट है या शास्त्रों में जो लिखा है वो राइट है। ये जज वाली बुद्धि चाहिए। इसमें दो सूक्ष्म बातें समझने जैसी है, एक है संशय, एक है संदेह। संशय होना चाहिए, संदेह होना चाहिए, हां दोनों में अंतर है। संशय तो है ही नहीं, हमें पता है ये भगवान ही है, परंतु ज्ञान को समझने के लिए संदेह। डिक्शनरी में दोनों शब्दों के एक ही अर्थ है, पर संदेह अर्थात हम जानना चाहते हैं क्या, ये क्यों कहा, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, भक्ति मार्ग में फिर ऐसा क्यों कहा जाता है, इस ज्ञान मार्ग में अगर ये सत्य है तो उसमें वो क्यों है। माइंड इंक्विजिटिव चाहिए, जिज्ञासा से भरा हुआ मन। जैसे और दो शब्द है, एक है आश्चर्य, एक है विस्मय, दोनों में भी अंतर है। शब्दकोश कहता है दोनों सेम है, पर आश्चर्य अर्थ अच्छा ऐसा हो गया, आश्चर्य ये बाहर है, विस्मय आंतरिक है। मैं आत्मा, इतनी छोटी सी आत्मा, अंदर जो जाता है वो विस्मय है, बाहर जो जाता है वो आश्चर्य, अंदर जो जाता है वो वंडर है, बाहर जो जाता है वो सरप्राइज है। उसी तरह एक है डाउट, सस्पिशन, संशय। वो अवस्था तो हम पार कर चुके, हम भगवान के ज्ञान में संशय नहीं कर रहे, परंतु हमें संदेह जरूर है। संदेह इसलिए क्योंकि हम जानना चाहते हैं। बाबा ने कहा है, साकार महावाक्य है बाबा के, सबसे ज्यादा गाय कौन सी दूध देती है, कौन सी गाय ज्यादा दूध देती है, जो जुगाली करती है, जो उगाड़ती है, जो गाय उगाली नहीं करती, जुगाली नहीं करती, उगाड़ती नहीं, वो बीमार है। जो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते गोया बीमार है। ज्ञान मिला है, मुरली चली सुबह, पर हमने विचार चिंतन किया ही नहीं, तो हम क्या हो गए, बीमार हो गए। अच्छे अच्छे वाक्य आते हैं, मैं पावन बनाए बगैर नहीं रह सकता, आज की मुरली में है सुबह, ये उसकी महानता है या कमजोरी? कोई कहे देखो मैं तो रह सकता हूं बिना पावन रहे और बनाए, तो चिंतन के पॉइंट्स आते हैं, चिंतन के विषय आते हैं, भविष्यवाणियां आती है मुरली में, ड्रामा की ताकत, मुरली में शब्द आया है ड्रामा की ताकत। ये तीन काल्पनिक अदृश्य सत्ताएं बाबा ने खड़ी की है, एक ड्रामा, माया और तीसरा कुदरत। कई बार मुरलियों में आता है ये कुदरत है, कैसे वो गोल हो जाता है पत्थर और वहां चला जाता है और शिवलिंग बन जाता है, ये कुदरत है। एक है माया, माया है क्या, कुछ अदृश्य कुछ है ही नहीं। ड्रामा, ड्रामा कुछ है, कुछ भी नहीं है वैसा देखा जाए तो। ये तीन शब्द खड़े किए हैं। तो ये शिक्षक कैसा है? सत शिक्षक है, टीचर है। और उसके पढ़ाने की विधि देखो कैसी है, कितने संसार की चीजें बताता है वो, अपनी निराकार बात को समझाने के लिए संसार की वस्तुओं को लेकर अपनी पॉइंट पर उस पर टंगाता है। क्या करता है, उसकी बातें निराकार है, एब्स्ट्रैक्ट, वो कैसे बताएगा, तो वो संसार के उदाहरण लेता है। अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, कौन सा झूला, झूला है क्या, कहीं झूला होता है क्या, कुछ पंख लगा के उड़ो, कौन से पंख, पंख होते हैं कुछ, ये सब निराकारी चीजें हैं, उमंग उत्साह, उमंग उत्साह ठीक है, पंख कौन से उमंग उत्साह के, अपनी सारी निराकारी बातों को संसार की चीजों को लेके टंगाता है अपनी पॉइंट्स समझाने के लिए, ऐसा अद्भुत टीचर है। शेक्सपियर का एक पात्र कहता है, एंड एज इमेजिनेशन बॉडीज फोर्थ द फॉर्म्स ऑफ थिंग्स अननोन द पोएट्स पेन टर्न्स देम टू शेप एंड टर्न्स टू एयर इन नथिंग एंड गिव्स टू एयर इन नथिंग अ लोकल हैबिटेशन एंड नेम। वो लिखता है कवि जो होता है उसका मन कल्पना का आधार लेता है और क्या करता है, संसार की जो चीजें है एयर इन नथिंग, जो कोई उसका रूप ही नहीं है, एंड गिव्स डेम टू अ लोकल हैबिटेशन एंड नेम, उनको नाम देता है और एक घर देता है। किनको, जो चीजों का कोई आकार नहीं, जो निराकारी है, अदृश्य है, एंड टर्न एंड गिव्स टू एयर इन नथिंग अ लोकल हैबिटेशन एंड नेम, ऐसा काम करता है। भगवान सबसे बड़ा कवि है, कवियों का कवि है, साहित्य सम्राट है, इसके लिए भाषा उसकी रिच है, सादी भाषा नहीं है, शेक्सपियर इन हिंदी है, वो उसकी हिंदी शेक्सपियर की तरह हिंदी है, कालिदास की डेप्थ से भी कई गुना अधिक उसमें डेप्थ है, ऐसा वो टीचर है। तो दूसरी बात है, वो यदि ऐसा है तो हमें कैसा बनना पड़ेगा, फिर कैसा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, पावरफुल स्टूडेंट बनना पड़ेगा, स्मार्ट स्टूडेंट बनना पड़ेगा, डल स्टूडेंट बन के नहीं रहना पड़ेगा। और स्मार्ट स्टूडेंट की निशानी, स्मार्ट स्टूडेंट की क्या निशानी है, स्मार्ट स्टूडेंट संदेह करता है, इंक्विजिटिव होता है, जिज्ञासा से भरा होता है, उसे बहुत कुछ सीखना होता है, बहुत कुछ समझना होता है, कोई कारण नहीं देता, पढ़ाई करेगा, करते रहेगा, दिन रात करते रहेगा, अंधेरी रात है, द्रोणाचार्य सोए हुए हैं, अचानक उनको आवाज आती है कि बाहर कौन क्या कर रहा है, बाहर आकर देखते हैं तो अर्जुन आधी रात में छोटा सा बच्चा धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है, वो कहता है तुम इतनी रात गए क्या कर रहे हो, वो कहता है क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो कहता है मैंने भीम भैया से सीखा है। क्या सीखा, तो उस दिन आधी रात को किचन में रसोई में अंधेरे में वो खा रहे थे खीर, तो मैं पहुंचा और पूछा कि तुमको अंधेरे में खीर दिखती है क्या, तो भीम ने कहा ये जो आंखें हैं ना, आंखों को भी उंगलियां होती है, अभ्यास अर्जुन अभ्यास, वही अभ्यास कर रहा हूं, ऐसा अभ्यास। तो जो और जो दिखाया है वो गुरु अश्वत्थामा को चक्रव्यूह सिखा रहे, सब बच्चे खेल रहे, वो आके बैठ जाता है, वो कहता है कि तुम नहीं खेलोगे, वो कहता है जब गुरु शिक्षा दे रहे हैं वो सोने का वक्त या खेलने का वक्त नहीं होता, जब गुरु शिक्षा दे रहे हैं तो वो खेलने का समय नहीं होता, ऐसा स्टूडेंट। इसके लिए वो जयद्रथ जब पूछता है कि द्रोणाचार्य से पूछता है कि मैं और अर्जुन साथ साथ थे परंतु वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर क्यों, मैं क्यों नहीं, द्रोणाचार्य कहते हैं मैंने तुम दोनों को समान शिक्षा दी परंतु अर्जुन वहां पर रुका नहीं, तुम रुक गए, शिक्षा मिल गई, मुरली पूरी हो गई, बस हो गया काम, आगे कुछ करना है ये किया ही नहीं, आगे भी तो कुछ करना है। वो कहता है उसने धनुर्विद्या को अपना दुर्ग बना लिया, वो वहां से उसने शुरुआत की जहां से मैंने छोड़ा, पर तुम सब बाकी विद्यार्थियों ने बस क्लास पूरी हुई चलो अब घर, देखेंगे कल जब टाइम होगा तब धनुर्विद्या का अभ्यास करेंगे बाण मारने का। तो स्मार्ट स्टूडेंट की निशानियां कुछ और होती है, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दिन रात अभ्यास करते रहता है, दिन रात चिंतन करते रहता है, सोचते रहता है, समझने की कोशिश करता है। आज की मुरली में कोई बिरला ही मुझे समझता है, तुम में से बहुत थोड़े मुझे जानते हो और तुम में से कोई बिरला ही है जो मुझे समझ पाता है आज की मुरली में, यथार्थ रीति समझने वाला कोई विरला है, बड़ा ही कोई दुर्लभ ऐसा कोई प्राणी है तुम में से भी जो मुझे समझ जाए मैं कौन हूं, और उसको समझने के लिए उसके जैसा बनना पड़ेगा, सूक्ष्म निराकार और प्योर। उस प्यूरिटी से ही उसे समझा जा सकता है, जरा भी इंप्यूरिटी है तो कैसे समझ पाएगी आत्मा उसको। तो यह दूसरी बात थी। तीसरी बात जो उस मूल्य में आई है वो है पाठ, और जिससे हमने इस क्लास की शुरुआत की थी। इस विश्वविद्यालय में पाठ कौन सा पढ़ाया जाता है? चरित्रवान बनने का पाठ, द मैन ऑफ कैरेक्टर। और चरित्र सबसे ऊंची चीज है संसार की, और जिसका चरित्र नहीं है संसार में भी उसे बड़ा खराब माना जाता है, और यहां तो चरित्र ही सब कुछ है। इसके लिए वो चरित्र निष्कलंक हो, स्पॉटलेस, सूक्ष्म में भी उसमें कहीं दाग धब्बा कलंक कलमश स्पॉट ब्लेमिश डॉट ना हो। यह थी तीसरी बात। पहला बताया लक्ष्य ऊंचा बनना, दूसरा बताया सत्व शिक्षक, और तीसरा बताया पाठ, चौथा गुप्त कार्य यहां हो रहा है। कौन सा? भारत लाइट हाउस बने, या विश्व ये जान जाए कि भारत ही आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। यह गुप्त कार्य केवल इस विश्वविद्यालय में हो रहा है। संसार में चाहे पॉलिटिकल फोर्स, चाहे आर्मी फोर्स, चाहे धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, राज्य सत्ता, बाहु वाली बल वाली सत्ता, यह जितनी सत्ताएं हैं, इन सब की बुद्धि उस एक सूत्र से हटी हुई है जो सबको जोड़ दे कि सब आत्माएं हैं। इन सब के मन में कहीं ना कहीं द्वेष और वैर भाव है एक दूसरे के प्रति। तो क्या ऐसे के द्वारा विश्व कल्याण हो सकता है? शायद नहीं। यह केवल इसी विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। यह संपूर्ण विश्व एक ही है। कल हमने इसकी काफी विस्तार से यहीं पर भी चर्चा की थी कि सब एक ही पत्ते हैं, एक ही झाड़ के पत्ते हैं, तो सभी के लिए प्यार हो जाए, केवल एक के लिए नहीं, सबके लिए। क्योंकि परमधाम का हमारा जो योग है उसमें हम सभी आत्माओं से जुड़ जाते हैं और फिर नीचे आते हैं, इसलिए नीचे आते समय भी सब हमारे हैं, ये भाव रहे। ये अलग वो अलग, ये अलग ऐसा वो वैसा, ये वाले नहीं, सब एक। पर इस भावना के लिए वो ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। केवल पढ़ने से और समझ से नहीं होगा, मियर अंडरस्टैंडिंग से नहीं होगा। उस स्थिति में लंबा समय रहना शक्तिशाली अमृत वेला, तो ही विश्व कल्याण का भाव जागृत होगा। नहीं तो मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं केवल केवल ये शब्द रह जाते, तकिया कलाम बस, और कुछ नहीं। तो गुप्त कार्य यहां हो रहा है विश्व कल्याण का, और इतना गुप्त है कि किसी को पता भी नहीं चल रहा है, और जो शायद यहां है वो भी भूले हुए हैं, उन्हें भी नहीं पता है कि हम विश्व कल्याण कर रहे हैं। तो ये चौथी बात बताई, यहां पर क्या हो रहा है, गुप्त कार्य। पांचवा, ये वंडरफुल विश्वविद्यालय है। क्यों? यहां अनपढ़ माताओं को भी पढ़ाया जाता है, 5 साल का बच्चा भी है, बुजुर्ग भी है, तो VVIP भी है, बूढ़े भी बुजुर्ग भी सब है यहां पर, और सबको एक ही पढ़ाई है। और यहां शरीरों को नहीं देखा जाता, यहां आत्मा को देखा जाता है। यहां पर शरीरों को नहीं देखा जाता है, आत्मा ट्रेवल कर रही है टाइम में, उस कालखंड में वो देखा जाता है, टाइम ट्रेवल हो रहा है यहां पर, आत्मा उस टाइम में ट्रेवल कर रही है, और वो जो है कालातीत वही देख पाता है कि ये सारी जो आत्माएं बैठी है किस टाइम में ट्रेवल कर रही है। चेतना का फोर्थ डायमेंशन इस टाइम। इसलिए ये ऐसा अनोखा विश्वविद्यालय, यहां सब प्रकार के हैं, हर धर्म के हैं, हर देश के हैं, हर प्रांत के हैं, हर भाषा के हैं, भिन्न भिन्न संस्कृति के हैं, सब जगह के हैं। और सब वन वन की काठी एक जगह आई है, महात्मा है। तो यह ऐसा अनोखा विश्वविद्यालय, इस पर आप और चिंतन कर सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय में कौन सी खासियत है। जैसे ये तो एक पॉइंट हो गई कि इसमें अलग 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 प्रकार के लोग हैं, अलग अलग एज के लोग हैं, और सबके लिए पढ़ाई एक ही है। कौन सी पढ़ाई है? अपने को आत्मा समझ, देह सहित देह के धर्म भूल, अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद कर। बस यही पढ़ाई का राज है, जो समझाने के लिए इतनी अव्यक्तवाणी है और इतनी साकार मूल्य है और ये सारी क्लासेस और ये तीव्र पुरुषार्थ है। क्योंकि आत्मा में जन जन का देह भान कुट कुट के भरा हुआ है, इसलिए। तो ये अगली बात। उसके बाद में बाबा ने कहा ये सहज पाठ है। ये जो पाठ भी यहां जो सिखाया जाता है वो पाठ भी सहज है। जैसे उदाहरण दिया, एक राम एक सीता तो राम राज्य, यहां इतने राम और इतनी सीता है तो कैसा राम राज्य होगा? इतने राम और इतनी सीता है तो, और ये पाठ बड़ा सहज है। और इस पढ़ाई में बाबा ने कहा सर्टिफिकेट मिलता है और बाप की गारंटी भी है, सोर्स ऑफ इनकम। ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, ये छठी बात। और सातवीं, इस पढ़ाई का एक नियम है, जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। तो अभी लास्ट एक बात, इस पढ़ाई को कैसे पढ़े, कैसे पढ़ा जाए, क्या करें? 10 बार मुरली पढ़े हो जाए, क्या किया जाए, क्या पढ़े और कैसे पढ़े इस पढ़ाई को? हाउ टू स्टडी, क्या किया जाए? हाँ, हर दिन नया मेथड चाहिए, एक ही मेथड से नहीं होगा। ये देखो, ये सारी इतनी मेथड बना के रखी थी, 108, ये तो पुरानी है। हाँ, ये दोनों मिला के 108। हर दिन नई नई मेथड का प्रयोग, हर दिन कुछ ना कुछ इजाद करनी होगी तो ही इसमें इंटरेस्ट बना रहेगा। नहीं तो कुछ समय के बाद ये ज्ञान ऐसा है कि इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी बातें वही वही रिपीट होती रहती है। बहुत सारी बातें सारी मुरलियों में रिपीट होती है, उसमें से वो पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। आज किसी ने कितना अच्छा भेजा, आज की मुरली में आई हुई सारी भविष्यवाणियों की लिस्ट भेजी, कितना चिंतन किया होगा ये निकालने के लिए। ऐसा चिंतन, इस तरह से चिंतन, देखो इतनी भविष्यवाणी, 11 भविष्यवाणी आज की मुरली से, और ये टॉपिक्स निकाले कम से कम 15। ये चिंतन, ये सुबह सुबह ही भेजा है ये किसी ने, और सुबह भेजा तो दिन भर इसके ऊपर चिंतन। तो टॉपिक्स निकालना, चिंतन करना, चर्चा करना, डिस्कशन करना, टाइम देना, एकांत में जाके बैठना, पढ़ना, सोचना इसके विषय में, और फिर हमारा जीवन ये है, मुरली ये है, इन दोनों को कहाँ मिला है, कैसे मिला है। नहीं तो मुरली अपने स्थान पर, लाइफस्टाइल अपने स्थान पर, दिनचर्या वही, सेवा वही, उसमें वो मिल नहीं रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है। ज्ञान एक तरफ, कर्म एक तरफ, दोनों इंडिपेंडेंट ऑपरेट कर रहे हैं। एक करना, मिलाना, इस मिलाने के लिए चिंतन चाहिए, एकांत चाहिए, मौन चाहिए। इतना सुंदर ये कैंपस है ज्ञान सरोवर का, कहीं पर भी जाना, 2-3 बातें लिख के रखना, जैसे एक टॉपिक ड्रामा की ताकत, एकांत में बैठना और सोचना, और सोचते सोचते ही आत्मा शरीर हो जाती है। ये भी एक रीति से योग ही है। 2 मार्ग है, एक है ज्ञान का मार्ग, एक है योग का मार्ग। योग का मार्ग से हम बहुत ऊंचे जाते हैं, पर ज्ञान के मार्ग से भी उसी अवस्था तक पहुंचा जा सकता है जो योग के मार्ग से पहुंच सकते हैं। वही अशरीरीपन ज्ञान के मार्ग से भी आ सकता है, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग। वही स्थिति, वही लगन में मगन अवस्था, वही अतीन्द्रिय सुख, क्योंकि चिंतन करते 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 क्या हो जाता है, खो जाती है, शरीर का भान ही भूल जाता है, एक हो जाती है आत्मा उस ज्ञान के साथ। तो वो और ये दोनों एक हो जाए, ऐसा चिंतन करना है। तो स्मार्ट स्टूडेंट बनना है, सिंसियर तो बनना ही है, परंतु स्मार्ट स्टूडेंट्स, जो थोड़ा सा पढ़े और पूरा याद हो जाए, पकड़ ले, समझ ले, जान ले क्या है। नहीं तो एक होता है क्लमजी, पढ़ते रहे कुछ याद नहीं, पढ़ते रहे भूल रहे, पढ़ रहे भूल रहे, और एग्जाम के टाइम तो सभी भूल गया, कुछ भी याद नहीं, जीरो ब्लैंक। इसके लिए स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। आज की मुरली से एक दो पॉइंट्स आप बताएंगे, क्या कहा आज बाबा ने? साकर हंस बनना है, और हंस बने तो हंस ही हंस होंगे, हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। उनका क्या पूरा बताओ, वो बीच का बता रहे, ऊपर नीचे बस, बाकी बहुत कर लिया, रेज गिरी, ये सब बातें छोड़ो और बाप को याद करो। हाँ हाँ, जो सहज योगी होते हैं, और नहीं लगा तो नहीं, बराबर सहज योगी है पर उनका नहीं लग रहा है, उनका भी तो कुछ दोष होगा, सब हमारा ही दोष है क्या? जैसे किसी घर में एक बार चोरी होती है, तो वो चोरी होती है तो पड़ोसी आते कहता है, मैंने पहले ही बोला था खिड़की बंद करके जाना, तुमने क्यों खिड़की बंद नहीं की? फिर दूसरा पड़ोसी आता है, वो कहता है कि मैंने पहले ही बोला था ये जो ताला है ना तुम्हारा ठीक नहीं है, उसको चेंज करो, तुमने चेंज क्यों नहीं किया? आई एम सॉरी। फिर उसकी पत्नी आती है, कहती है तुम तो हमेशा ऐसा ही करते हो, कुछ ध्यान नहीं रखते हो। वो कहते सारा दोष तो मेरा ही है, उस चोर का भी तो कुछ है कि सारा मैं ही हूं, चोर ने भी तो कुछ किया है। तो और क्या कहा? मैं समय पर आता हूं, बस मैं पावन बनाए बगैर नहीं रख सकता, इसमें मेरी कोई महानता नहीं, मेरी ड्यूटी है। कभी कहते हैं तुमने मुझे पुकारा इसलिए मैं आया हूं, कभी कहते तुम्हारी पुकारने थोड़ी आया हूं, मैं अपने काम से आया हूं, मेरा अपना है, मेरी ड्यूटी थी बस मैं आया हूं, ड्यूटी की थोड़ी महिमा होती है। हाँ, और परवश, मैं भी परवश हूं, वहां विकार को कोई, वो वाइसलेस वर्ल्ड होगा, ये विशियस वर्ल्ड है, कब्रिस्तान से बुद्धि हट गया। हाँ, और काली देवी की यादगार मदद करेगी चंडी, और कयामत का समय है, और हीरे बनाने, और बाबा ड्राइवर बनो तो हम उधर वो बन जाएंगे, वो था ना बाबा, बाबा लक्ष्मी नारायण भी मेरे सामने झुकेगा, ब्रह्मा बाबा को बोलता था ना एक भाई, क्यों? क्योंकि मैं उसका नारायण का नाई बनूंगा, बार बार तो झुकाएगा ना सिर काटने, तो आपका आपके बाल में अभी काट रहा हूं ना, तो उधर मैं वो बनूंगा। तो मुरली को रमणीक बनाना है, मुरली का अलग अलग रीति से चिंतन करना है, मनन करना है, और कुछ कुछ बातें याद कर लेनी है। छोटा बच्चा कैसा याद करता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, उसी तरह याद कर लेनी है ताकि वो काम आए। ओम शांति।